যুক্ত বৈরাগ্য, যুক্ত বৈরাগ্য কে কর্তব্য? হ্যাঁ, ঘরে বসি সদাকাল কৃষ্ণ নাম লইয়া, যথাযোগ্য বিষয় বুঝিয়া না সত্য হইয়া। বতায় ঘরে বেট করছি সবসময় কৃষ্ণ নাম কীর্তন করো আর যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ, অর্থাৎ যে কুছ কর্ম করনা হ্যাঁ ঠাকুর না আদেশ দিয়া, যে কোনো এক ব্যবসা ধরে জীবন নির্বাহ করে মুখে বলো হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা যায়, মা একমাত্র ভিক্ষা মাংতাম, ঘর মে রহ। কিন্তু কই জীবিকা নির্বাহ করে কোন ব্যাপার বাণিজ্য করো, কিন্তু ওসব চুরি নাই করি আর মাছের ব্যবসা নাই করি, পানি নিশা চোরি এসব নেই, ব্যবচার সে ধরনের কপটতা নেই। যদি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করো চলে গেল, যথাযোগ্য যেতনা জরুরত ইতনা কামাও, অধিক নেই কম নেই, আমরা পাঁচ রুপয়ে দু হাজার পাঁচ রুপয়ে কামাও, কাল কৃষ্ণ ব্যবস্থা করেন গৃহস্থগুলো উপদেশ দেওয়া ঠিক আছে, এক রুপয়ে সঞ্চয় করতে রাখো করো ঠিক বৈষ্ণব আজায় তো এসে। আচ্ছা আর কে কেবল কৃষ্ণ নাম করেন কি বাহানা লেকার যে আর কোই কাম ধাম নেই করেন, এসা ভি ইসলে বতলা রে যথাযোগ্য বিষয় বুঝ, অনাস্ত জিতনা জরুরতে না অধিক বি নেই কম নেই। যথাযোগ্য এই শব্দ দুটি মন্মার্থ বুঝিল, কপটার্থ লইয়া যেন দেহার আমি না হ। যথাযোগ্য শব্দ কা তাৎপর্য লেকার কি এসা মত করো কি উসে দো মর্মার্থ হয়, কপটার্থ লেকার কি দেহার আমি মত করো। হ্যাঁ, আম কৃষ্ণ কা ভজন করেন কর্মী, আম তোড়ি বা নেই আম কর্ম নেই করেন, আমি কর্ম নেই করেন আম বাস আরামসে সংখ্যা নাম কিয়া কুছ কিয়া চুপচাপ শরীর কো পালতে রে পুষতে রে, কপট তা মত করো। কেউ শুদ্ধ ভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার, শুদ্ধ ভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার। ये बार बार बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति के अनुकूल वस्तु स्वीकार करो, शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल प्रत्येक करो, अर्थात जिसके संग से शुद्ध भक्ति होगा, हरिगुरु वैष्णव के जो विरोधी है वहां नहीं जाने का, उनसे संबंध नहीं रखने का, और हरि सेवा के जो विरोधी वस्तुएं हैं वो ग्रहण नहीं करने का, जिसमें से हरिस्मरण के लिए विपरीत बातें हैं उसको स्मरण नहीं करने का, कीर्तन नहीं करने का। इस प्रकार से कृष्ण इतर वस्तु के लिए समस्त चेष्टा त्याग करना पड़ेगा, और कृष्णार्थी अखिल भोगते हैं, कृष्ण के लिए अपने भोगों को छोड़ना पड़ेगा और कृष्ण इतर वस्तुओं को त्याग करना पड़ेगा। ऐसे सब विचारों को देखना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति प्रतिकूल करो अस्वीकार, शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल को अस्वीकार करो, অশুদ্ধ ভক্তি অনুকূল কো অঙ্গীকার করো। মর্মার্থ ছাড়িয়া যা শব্দ অর্থ করে, রসের বসে দেহারামি কপট মার্গ ধরে। মর্মার্থ ছোড় দিয়া যে ডাইরেক্ট অর্থ ডিপ মিনিং সে উসকো ছোড় করকে যে কেবল বাহারি শব্দ কো লেতে হ্যাঁ ও কেসে হ্যাঁ, রসের বসে দেহারামি কপট মার্গ ধরে, রসকে বসীভূত করছি কপট মার্গ, কপট রাস্তা অবলম্বন করতে হয়, সত্যি মে তো রসিক হুম, মে তো শ্রেষ্ঠ হুম, মে কেউ কর্ম করু, জেসে কর্মিক যোগী জ্ঞানী নির্বিশেষবাদ বনতে হ্যাঁ, সত্যি মে তো রসিক হুম গা, আর মে পাঠ কীর্তন প্রবচন করার জরুরত কে হ্যাঁ, আর মে কো অর্চন করার জরুরত কে হ্যাঁ, সুবে সুবে স্নান করার কে জরুরত হ্যাঁ, আর ইয়ে সব সেবা করার জরুরত কে হ্যাঁ, মন্দির ঝাড় দেনে সে ভগবান মিলেন, এসব করার কে জরুরত হ্যাঁ, এই স্তুতি রস রস কা মার্গ অবলম্বন করেন সোচ করকে কপট মার্গ রাখতে হ্যাঁ, ভালো খায় ভালো করে করে বহু ধনার্জন, যোশীর সঙ্গে রত হইয়া ফিরে রাত্রি দিন। দেখো তিন চিজ, যে আচ্ছা খায়গা আচ্ছা পেহনেগা আর ধন সম্পত্তি রাখেগা, ও নিশ্চিত মিষ্টির সঙ্গে করেগা নিশ্চিত হচ্ছে, কেউ আচ্ছা পেহনেগা না তো উসকো দেখনে বড় সুন্দর লাগবে, কেউ আর দেখনে চাইগা আর উসকো খুশ कर्म के सोचा अच्छे पहनेगा अच्छे खाएगा अब महाप्रसाद उनके देने नहीं मिलते और क्या करेगा धन अर्जन करेगा तो अच्छे खाना अच्छा पहनना है तो ज्योति संग रह तो या फिर वो स्त्री संग के लिए दिन रात घूमता रहेगा उससे वो बच ही नहीं सकता। भाल सज्जा अट्टालिका खुशी और बची ज्योति संगे रत हुआ तो फिर रात्रि दिन भाल सज्जा अट्टालिका खुजे और बासी वो स्त्री संग में भ्रमण करते हैं और क्या अच्छे अच्छे सैया मतलब बिछाना और ढूंढते हैं और बासी है मूर्ख है आगर भी तक ढूंढता है कहाँ अच्छा समय को मिलेगा कहाँ अच्छा लोगों की जरूरत मिलेगा। देह जाता उपयोगी नितान्त प्रयोजन विषय स्वीकार करी से कत देह रखन देह यात्रा के उपयोगी जितना जरूरत है इतना ही देह यात्रा के उपयोगी ग्रहण करो नहीं तो विषय स्वीकार मत करो। यदि मेरा दो रोटी से चलता है फल खाने में क्या जरूरत यदि हमारा यदि एक रोटी से चलता है तो क्या जरूरत है दूध और राबड़ी की। अर्थात शरीर यात्रा जैसे आसानी से चल जाता है इतना ही ग्रहण करो लोग लालच मत करो किसी चीज के लिए आकांक्षा और धन्य करना चाहिए क्या प्रभु कृपा करके धीरे धीरे ये सब चीज भजन हरिनाम करने से आप सब चीज अनुकूल कर दे पिपासा नहीं रहता पानी की भी नहीं मिठाई की भी नहीं खाने की भी नहीं क्या शरीर को निर्वाह करने के लिए उसको देना पड़ेगा इसलिए अभ्यास से चलता है नहीं तो कोई आकांक्षा उत्कंठा नहीं रहेगा। सात्विक सेवन करो आशुभ वर्जन सर्वभूत दया करी करो उच्च संकीर्तन सात्विक सेवन करो आशुभ वर्जन आशुभ मतलब मदिरा और अपने इंद्रोक्ति जप कोई वस्तु को ग्रहण मत करो तामसिक राजसिक नहीं केवल सात्विक और सब प्राणियों के ऊपर दया करने के लिए उच्च संकीर्तन करो। देव सेवा छल करी विषय नहीं करो विषय से राग दे सदा परिहर सोचते हैं भगवान की सेवा तो मुझे करना पड़ेगा तो इसके लिए 2 बीघा जमीन खरीद लूँ बैंक बैलेंस कर लूँ या कुछ व्यापार खोल दूँ मैं उसी से भगवान की सेवा चले जाती भगवान मंदिर था तो चारों तरफ दुकानें खोल दूँ या कुछ ज़्यादा जमीन है फैक्ट्री खोल दूँ कोई बिजनेस खोल दूँ। देव सेवा के छल करके विषय को संग मत करो ग्रहण मत करो सोचते कुछ मशीनरी लगा लूँ कुछ इनकम हो जाएगा नहीं भगवान की सेवा के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं वो प्रभु अपनी सेवा करने की अपनी व्यवस्था अपना करेंगे उनके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं विषय का संग मत करो। परम विषय कपटता अन्य सने बोल कबू नहीं करो भाई यदि मोर वाक्य धरो परम हिंसा दूसरे को हिंसा कभी मत करो कपटता नहीं करो और दूसरे के साथ वैर शत्रुता नहीं करना है कबू नहीं करो भाई यदि मोर वाक्य धरो कबू नहीं कभी मत करो मेरा वाक्य करो लो मेरा वचन सुनो और ग्रहण करो। निर्जन सुदृढ़ भक्ति करवाचन कृष्ण सेवा संबंध दिन कर जापन निर्जन सुदृढ़ भक्ति सब समय मन मानता नहीं जाकर गल्प करते पैदल पड़ते नहीं एकांत बैठ कर थोड़ा सा हरिनाम करो थोड़ा सा प्रपंच सुनने पर भी उत्तर मत दो या कभी किसी बात की आलोचना मत करो कृष्ण सेवा से संबंध से दिन को जापन करो। मत पंडित दारण बाड़ी ना करो प्रयास अर्थदाय करो भाई यम अनुभिलास ये मत सोचो मत बनाना है मंदिर बनाना है दालान बड़बड़ बिल्डिंग बनाना है बड़बड़ घर मकान बनाना है इसके लिए प्रयास मत करो क्योंकि अर्थ है तो जैसा अभिलाषा है ऐसा करो कैसा अभिलाषा पता नहीं अर्थदाय करो भाई यम अनुभिलास अर्थ ना है तभी मात्र सात्विक सेवा करो जल तुलसी दिया गिरिधारी के बक्षे धरो अर्थ है तो आपका अभिलाषा है जन्माष्टमी करेंगे बड़ा फंक्शन वैष्णव की सेवा करेंगे महोत्सव करेंगे और वैष्णव को वस्त्र दान करेंगे जो अर्थ है तो कर दो और अर्थ नहीं है तो क्या करो सात्विक सेवा करो जल तुलसी देकर के गिरिधारी की सेवा करो उनको छाती में रखो। भावे ते कांदिया बोलो आमी तो तुम्हार तो पाद पद्म चित्ते रोहू को अमार भाव पृथ्वी साथ में रो रो करके बताओ मैं तो प्रभु आपका हूँ आपके पाप पद्म हमारे चित्त में सदा के लिए रहे। वैष्णव आदर करो प्रसाद आदि दिया अर्थ नए दैन्य वाक्य तो समिनती करिया, वैष्णव का आदर करो प्रसाद दे करके। और क्या अर्थ यदि नहीं है तो विनती के साथ में दैन्य के साथ में उनको समझे प्रार्थना करो। परिजन परिकर कृष्ण दास दासी आत्मसमर्पण होषी परिजन परिकर जितने लोग हैं सब कौन है कृष्ण के दास दासी हैं, सबके साथ में आत्मसमर्पण जैसे अपने आत्मा को प्यार करते हो ऐसे दूसरे को भी सोचना, मेरे को इस बात से दुख होता है दूसरे को भी दुख होता होगा, इसलिए किसी को कटुवचन कटुवाक्य नहीं सुनाना नहीं कहना। किंतु महाराज ने जैसे बोला यदि भक्ति के विरोधी है तो उनका मुख भी मत देखो और उनको कटुवाक्य कर ऐसे बोल दो इससे आगे जो आप डिस्टर्ब न करे कभी, अब नहीं करे जो हो गया हो गया अब से सावधान हो जाओ, ऐसे कटुवाक्य बोल देना है फिर हमें से मिले साधु नहीं कर सकते बहुत अच्छा है तुम साधु कहने से हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से भी वो भी विचार है। महाराज बड़े कड़क कड़क आदेश देते हैं कभी कभी। तो यही तो स्मरण कीर्तन सेवा सर्वभूत दया यही तो करीब युक्त वैराग्य होइया, सस्म स्मरण कीर्तन सेवा सब प्राणी पर दया करो ये है युक्त वैराग्य। कृष्ण यदि नहीं दे परिजन परिकर अथवा दिया तो लय सर्व सुखे रहकर, कृष्ण यदि किसी को परिजन परिकर नहीं देते मतलब धन पुत्र नहीं दे और देकर के ले जाते हैं, शोक मोह छलवाए नाम करो निरंतर जगाई वाले भाव गोरे शनि मोहर कुंद अलविस्तर, शोक मोह छोड़ दो लेकर के दे लिया देकर ले लिया ये दिया ही नहीं कोई बात नहीं, उनसे शोक मोह छोड़ नाम करो जगाई बताते हैं मेरे साथ मिलते ऐसे झगड़ा होता रहता है उसके अंदर इसकी वैसा कल ठीक से और बोलेंगे प्रेम विवर्त दसम अध्याय जाति कुल कुल और भजन दिग्गता। भजन राज्य में कोई कुल खानदान की जरूरत नहीं, जाति की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, कोई यूं मत समझे एक समय चैतन्य मठ में प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी के निकट हमारे भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज उनका पहला नाम था सिद्ध स्वरूप जो प्रभुपाद के नाम दिया सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी तो नाम आए आंसू से दिखा मठ में सब पंडित थे वो मुख्तारी करते थे वकील के ऊपर, वो सोचा सब लोग जो पंडित है मैं मूर्ख क्या करूंगा मठ में, घर चले गए संस्कृत पढ़ के पंडित हो गए आऊंगा और मुझे महाराज जी को पता पड़ा बोला अच्छा ये बच्चा कहाँ है बड़ा सुंदर लड़का आया था तो घर चला गया क्यों बोलता कि पढ़ लग करके आऊंगा, तो परम गुरु महाराज सीधा घर गए बांग्लादेश जा करके उनके घर में 7-8 दिन प्रवचन किया और उसको पकड़े और बोले चलो कहाँ रूपा जी के क्यों बोले जिसके जितना योग्यता है जितना गुण जो कुछ है वो भगवान की सेवा में देखे वहां से शुरू कर दो भगवान की सेवा, भगवान जो कुछ दे उससे करो अब भगवान की क्या ताकत नहीं है घर में विद्या देंगे तो वहां नहीं विद्या दे सकते हैं जिसको देना होगा तो, अरे कौन देने वाला विद्या मालिक, मालिक यही है। मैं क्या बताऊं मैं तो इतना मूर्ख था मेरे को तो एक संस्कृत अक्षर भी नहीं पढ़ा जाता अब तो कम से कम कैसे टूट फूट के तोड़ लेते पढ़ लेता हूँ और अर्थ भी जैसे निकाल ही लेता हूँ, स्कूल कॉलेज कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है गुरु चरण में सब कुछ है सदगुरु चरण में ले आए पकड़ करके ले आ करके पढ़ाने लगे पढ़ाते पढ़ाते फिर बाद में उन्होंने वेदांत भाष्य लिख करके वेदांत सूत्र का भाष्य लिख करके सब प्रकट लिया मेरे उपनिषद लिखा साधारण बात नहीं है गीता किया गीता का बल्द विद्या का पावर ही ऐसा टीका का अनुवाद कर दी दोनों किया छोड़ा नहीं किसी को इसमें मतलब मिला हुआ है सब उनका भाव को लेकर उसमें लिखा और उसके एक बार का तो अनुवाद ही कर दी सब बल्द विद्या का भी चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा धुंध और परम गुरु जी को बहुत सम्मान करते थे और भाषण परम गुरु महाराज किसी भी समय होता है कोई भी अनुष्ठान पहले सिद्धांति महाराज भाषण देंगे बच्चा है शिष्य की तरह और वो भारती महाराज जी के आश्रय में सारा जीवन व्यतीत किया। भारती एक दिन क्या किया भारती महाराज जी ने प्रचार में गए खुद गड़बड़ी की थी इतना मारा शरीर फट गया बिल्कुल सबने आकर प्रभुपाद जी से बोला भारती महाराज जी लंबे छोड़े तिप्प महापुरुष भारती महाराज ने प्रभुपाद जी बोले, भारती महाराज ने सिद्धांत को सिद्धेश्वर को बहुत मारा मारा है, प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, जानते हैं वैष्णव है, कुछ गलत काम किया तभी शासन किया होगा। तो अब बुलाया प्रभुपाद जी ने सिद्धेश्वर को, बड़ा स्नेह करने लगे, बोले अब भारती महाराज की पार्टी में जाओगे नहीं ना, नहीं मेरे पास रहोगे ना, आपके पास रहूंगा, अब नहीं जाऊंगा, किंतु सेवा में भारती महाराज की करते थे वो, फिर भारत में प्रचार में जाने की तैयारी हो गए, अभी निकलेंगे। सिद्धेश्वर जाकर के बोलते हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद शासन दंडवत करके, उस समय कोई भी बात होता गुरु केन्द्र जाकर शासन दंडवत कर तब बात करते थे, तो शासन दंडवत करके बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद मेरे को एक आदेश मांगने आया, तो क्या, मैं भारती महाराज के साथ प्रचार में जाना चाहता हूँ, आप यदि आदेश दे तो। बोले क्या तुमको माराना पिटाना था, कोई कोई बात नहीं, मैं उनके साथ ही जाऊंगा, प्रचार में गए। अच्छा आखिरी प्रभुपाद जी का प्रकट के बाद में कोई भारती महाराज जी के साथ ही रहे, और मंदिर में जाओगे किसी भी मंदिर में सब जगह भारती महाराज जी के विग्रह मिलेगा आपको, उनका प्रकट लिया के बाद उनके गुरु की तरफ प्रभुपाद जी के विग्रह एक तरफ, तो भारती महाराज जी विग्रह एक तरफ रखा, भारती महाराज जी को शिष्य दिशा नहीं किया, ये सेवा करते थे। बाद में सिद्धांत महाराज जी अपना शिक्षा छोड़ दिया, शिष्य दिशा किया, किंतु नियम के बड़े पक्के हैं, उनके एक शिष्य यदि चैतन्य मठ में भी कथा सुनने चले जाते हैं बस उसको खत्म, किंतु कैसा मर्यादा देखो, पुष्पा तीर्थ महाराज जी चैतन्य मठ के आचार्य थे ना, वृंदावन में जमीन किन्ने खरीदा उनको दे दिया, अपने को गाड़ी मिला उनको दे दिया, और चैतन्य मठ की सेवा के लिए उनके पास धन दौलत जुटने आता, तो प्रभुपाद जी की सेवा है, आकर मठराज की सेवा है, इतना मन होता, किंतु उनका नियम ही से कितना है, हमारा कोई भी शिष्य किसी मठ में नहीं जाएगा, किसी कथा नहीं सुनेगा, सुनने से बुद्धि भ्रमित हो जाएगा, गुरु के प्रति भगवान को तो अमरता करेगा और तत्व विचार भी हो जाएगा, ऐसे पक्के थे कड़क। और मंदिर में जाकर देखो ठाकुर जी कैसी सेवा होते, और पहले विधि मार्ग को सेवा कर फिर राग मार्ग को समझेगा, अपने आप भगवान समझा देंगे, जैसे हम लोगों ने किया, बड़ा मेहनत करके एक शिष्य बनाया, इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हो, श्रद्धा जाति गुरु से कुछ नहीं करता है, कल शुरू कर घंटा बच गया लोग क्या कर रहे हो, या बार अपराध विष्णु का बच गया, श्रद्धा जाति गुरु बहुत लंबे मुद्दा के बच्चे की तरह से को डिस्टर्ब करता है, उधर बैठे से कुमार में लगे फिर खड़ा हो जाओ, इधर बैठे से कुमार में नहीं लगता, भजन जगता श्रद्धा हुई नरमात्र नामेर अधिकारी जाति कुलेर तर्क तर्कीर ना चले भारी बुरी ब्राह्मणे सत्कुल नहे भजने अयोग्य श्रद्धावान नीचे अति नही भजने अयोग्य। वहाँ वेदांत सूत्र ने बतलाया क्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा, कब बताते हैं कब ब्रह्म जिज्ञासा होगा भगवान के लिए, जीव जिज्ञासा करेंगे सब बतलाया, परीक्षा लोकान कर्म चितान निर्वेद माया स्थान अकृत कीर्तन तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु स्वयं उत्तम शब्दे परेश निष्णातम ब्रह्म निपसमाश्रयम, ऐसे बतलाया कब, जब इस संसार में भ्रमण करते 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 समस्त कर्म ज्ञान योग अवलंबन करके देखते हैं किसी चीज के अंदर में वो शांति नहीं है, तब जीव के अंदर में जिज्ञासा उदित होता है, अथवा अनंतर क्या शांति सुख कैसे मिलेगा, मैं कौन हूँ ब्रह्म क्या है, किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय ने या भक्तों ने ऐसा नहीं बताया, बतलाया जिनके अंदर में चलिए श्रद्धा उत्पन्न हुआ, किसी के अंदर में विश्वास हुआ भगवान नाम की कोई वस्तु है, उनके लिए वो खोज करने लगे, उसी समय कोई भी व्यक्ति मिलेंगे तत्वज्ञानी सब भक्त साधु उनको जिज्ञासा करना पूछेगा कि कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, ये कैसे मैं प्रसन्न हो जाऊँ, ये पूछता है, वो इधर उधर घूमता है, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। वैसे जब प्रश्न करते पूछते हैं, पूछते पूछते क्या करते हैं, प्रभु देखते हैं कि वो मेरे खोज में है, अपने आप सत्संग में ला देते हैं। साधु में विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास एक चीज नहीं है। पहले थोड़ा बहुत विश्वास होता है, जितना विश्वास गाढ़ा हो जाता है श्रद्धा इतना पक्का हो जाता है। और श्रद्धा के आखिरी नाम है आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। बढ़ते 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 इतना परिमाण में बढ़ जाता है, उसका रूपरेखा बदलता है। इन मूल में क्या है, श्रद्धा। अभी बता रहे हैं, श्रद्धा मिले नरमात्र नाम है अधिकारी। श्रद्धा होने से समस्त जीव ये नाम के अधिकारी बनते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं है ये हरिनाम नाम के प्रति श्रद्धा कैसे होगा, नाम के कैसे। उत्तम भागवत यदि कीर्तन करते हैं, उनसे श्रवण किया, ऐसे महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, जो सुने उनसे, जिसे सुना उनसे, जिसने सुना, परंपरा देश गांव वैष्णव हो गया। ऐसे उत्तम अधिकारी नहीं मिले तो मध्यम अधिकारी जो संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, भगवान में विश्वास है, उनके साथ में आपने कीर्तन किया या कीर्तन श्रवण किया, तभी एक थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न होगा। कनिष्ठ अधिकारी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भाव भी नहीं, कुछ भी नहीं, जानता भी नहीं, क्या जानता है, इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा, इससे मेरे को शांति मिलेगी, इससे मैं करता हूँ, तो नाम कीर्तन करता है। उनके साथ में प्रैक्टिस करते 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 कभी धीरे 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 करके चलती आगे उन्नत होगा। इससे होता है श्रद्धा होने से नर मात्र प्राणी मात्र नाम के अधिकारी होते हैं। उसमें जाति को तर्क और तर्की के पास नहीं चलता, कहेगा नाम क्या रोटी देगा, मैं तो नाम से जब करता ही नहीं, मेरा क्या हो गया। तर्क करने से तर्को प्रतिष्ठा सुतरो विभिन्न नासार ऋषि जस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्तम निहितम गुहायाम महाजनो जन गतो स्वतंत्र। तर्को प्रतिष्ठा, तर्को का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आपने तर्क भी दूसरे ने काट डाला, फिर उसने प्रतिष्ठा की तीसरे ने काट डाला, तर्क का प्रतिष्ठा नहीं है कोई प्रतिष्ठा। क्यों, भगवान स्वयं प्रतिष्ठित वस्तु है, उनको कौन प्रतिष्ठा करेगा। जीव अपने बुद्धि और तर्क से भगवान की प्रतिष्ठा तो कर नहीं सकता, तो प्रतिष्ठित भक्ति है, हम उनको बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए भगवान को प्रतिष्ठा करने की किसी जरूरत नहीं है। इसे बताया तर्को प्रतिष्ठा, तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। श्रुति विभिन्न विभिन्न श्रुति में विभिन्न तरह की बातें बताई, एक जगह में एक एक तरह की बातें हैं, जो जैसे हैं वो बातों को मान लेते हैं। इसलिए बताया जाति कुले तर्क तुर्की ना चले भारी बुरी, जाति के द्वारा, कुल के द्वारा, खानदान के द्वारा किसने बताया, देखो हमारे खानदान के लोग नाम नहीं करते, हम तो भांगी है, नीच है, जाति है, हम तो बनिया है, ब्राह्मण है, हम बनिया है तो महादेव की उपासना हमारे परंपरा का धर्म है, दुर्गा जी की उपासना करना हमारा धर्म है, हम क्यों ये नाम करे बंगालियों की है? या हम क्यों नाम करे ये अंग्रेजों की, अंग्रेज लोगों ने कहा से पता नहीं ये हरिकृष्ण ले आया, पहले बंगालियों की। ये सब जाति, कुल, तर्क और तर्की के द्वारा ये चलेगा नहीं। क्या ब्राह्मण है सत्कुल नाम है भजनेर जो ब्राह्मण के जो खानदान है ऊंचा मानते हैं अपने को, सत्कुल है, इससे क्या भजन में रुचि हो जाएगा, भगवान में रुचि हो जाएगा, नहीं हुआ। अभिमान है, पैर से सर तक बने हुए हैं, भजन नहीं कर सकता, उनके अंदर में दीनता आती नहीं आसानी से, ये नहीं सोचते सोच सकते कि मैं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, ये बिना तो किसी भाव नहीं आता, इसके लिए सबको उपदेश दे देते, हृदय शुष्क कठोर हो जाता है। कनिष्ठ अधिकारी जब किसी हरिकथा बोलता है, भगवान की कथा कहते 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 जैसे उनको प्रतिष्ठा सम्मान मिलने लग गया, उनका हृदय शुष्क कठोर हो जाता है। क्यों, कथा कीर्तन तो कर रहा है किंतु श्रवण करने की सुजुग नहीं। यह कीर्तन कर रहा है भगवान के प्रीति के लिए साधन समझ करके, मध्यम की कथा बोलता है, किंतु मैं भगवान की प्रीति के लिए कार्य कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ, इसी से मेरा हृदय भी शुद्ध होगा, कीर्तन करने से मैं भी श्रवण करूंगा, मैं भी स्मरण कर सकता हूँ, भगवान ने मेरे को सुजोग दिया है, चित्त तो कठोर नहीं होता। अभी वो ब्राह्मण ये अभिमान के द्वारा मैं बड़ा हूँ, इस अभिमान को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सुत गोस्वामी जी ने सोनकादि ऋषियों को उपदेश सुनाने लगे। कितना उम्र है? छोटा है, रोमर्शन सूत छोटा, उसमें पुत्र ग्रस्तवा सूत, जाति के सूत जाति सारथी जो घोड़ा चलाने वाला रथ चलाने वाला उसको यहाँ पर कुछ और जाति बोलते हैं, तो सारथी वो सूत जाति वो क्या कथा सुनाएगा? और यदि कथा सुन भी रहे हैं किंतु यदि ऋषि महर्षि की श्रद्धा नहीं हुई तो वो कथा काम नहीं करेगा। आपके जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है उनसे कथा सुनने से वो कथा हृदय में जाके काम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए? इससे सुत गोस्वामी ने सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए क्या बताया? हे महर्षियों, हे मुनियों, हे ब्राह्मण सज्जनों, मैं आप लोगों को अपनी कोई बीती हुई बात, अपना अनुभव की बात, अपने ज्ञान की बात कम कुछ भी नहीं कीर्तन करने जा रहा हूँ। हमारे जो गुरुपाद पद्म जो मुनियों के भी मुनि हैं, ऋषियों के भी महर्षि हैं, जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, जो कि भगवत तत्वज्ञ हैं, उन गुरु के सामने मैं जो बैठा था उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में शरण किया, मुझे समस्त विवेक और तत्व ज्ञान दिया, उन गुरु की ही महिमा और गुरु की कथा आपको मैं सुनाने कीर्तन करने जा रहा हूँ। केवल मात्र आप लोगों को सुनाने नहीं, उनके प्रसन्नता के लिए है, और वो तृप्त होंगे कि हमारे बातों को आज जगत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको किसने सुनाया? साक्षात वैस नारायण तो था, साक्षात नारायण वैसे जी ने सुनाया। वैस भी तो जाति के शूद्र जाति के हैं, समझ तो शुद्र जी कौन सी जाति के, नारद कौन सी जाति के। इसलिए जब समस्त ऋषि महर्षि सुनने लगे उस समय बोले हो आपके ऊपर बलदेव प्रभु ने बच की बात की, इसलिए आप इन कथाओं को कीर्तन करने के लिए आपको योग्यता आया, और गुरु मुनि नाम मुनियों के गुरु जो सुखदेव गोस्वामी उन्होंने आपको समस्त कृपा किया है, शक्ति संचारित किया। किंतु तभी देखा ऋषि महर्षि लोग झुक करके प्रणाम नहीं किया गुरु को, अर्थात कथा जो वक्ता होते हैं वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं हुआ। अभी फिर उन्होंने अभी आत्मतत्व की बात शुरू कर दी भागवत में दूसरे अध्याय में, जैसे आत्मतत्व शुरू कर दी हैं, ये जाति कुल मर्यादा वर्णन में आश्रम और भगवान आत्मा अतीत वस्तु है आरंभ कर दी। धीरे 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 ऋषि महर्षियों ने अब उनको आप कहने लग गए, सम्मान करने लग गए, भगवत कृपा से आप इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, आप कृपा करके हम लोग के जो ये इतना दिन हम पुराण श्रवण किया हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं आया, आज आपने हम लोग को ये जो कृपा किया है ये भी भगवान की हम अहित कृपा ही समझते हैं, अभी कभी रह गया। तब सुत गोस्वामी ने अब फिर दोबारा गुरु तत्व के बारे में शुरू कर दिया। जब द्वितीय स्कंद पूरा होने जा रहा है तब ऋषि महर्षियों को होश आया, समझे, तब उन्होंने भागवत शुरू की। इस प्रकार से बता रहे हैं जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हरि कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, किसी भी सुनेंगे, आपके अंदर में वो चीज आएगी नहीं। कैसे? जो कथा कीर्तन करने वाला है उनके हृदय में जो भाव है, वो जो भगवान के और गुरु के सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, जिस स्थिति में है वो संचारितों के हृदय में आएगा नहीं, फिर श्रद्धा बनेगा कैसे? ये भी तो बात है। इसलिए साधक प्रथम अवस्था में भगवान के निकट एक ही चीज प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे दयामय, हम तो आपके सामने आकर क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं जानता, आप ये कृपा कीजिए आपके प्रिय जनों के मैं प्रिय कार्य कर सकूं, प्रिय बन सकूं, और धाम से गिरिजा जी से सबसे ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु ये कृपा कीजिए, भक्ति हो यथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मुरवार, ये नहीं कहा प्रभु आप जहाँ है वहाँ जन्म हो, उस वक्त की कैसे भी जन्म हो कीड़े मकोड़े, किंतु जहाँ आपके दास है, अर्थात भक्तों के सान्निध्य, भक्तों के संग, भक्तों के प्रिय कार्य, भक्तों के प्रिय बन सके, यदि बन सका भक्तों के प्रिय तो उनके हृदय के समस्त भाव शक्ति हृदय में आकर के भगवान के प्रिय कार्य के लिए अपने आप ऑटोमेटिक लगाएगा, उनके हृदय में तो और कोई भाव है नहीं, भगवान के प्रति के अलावा वो कुछ जानते नहीं है, वो संत हैं जिनके हृदय में समस्त सद्गुण अंत तक प्राप्त कर चुके हैं, इससे बतलाया श्रद्धावान नीच जाति नहीं भजन रोगित, जाति में नीच जाति हो किंतु भी श्रद्धावान है वही भजन के लिए योग्य है, और नहीं तो सभी अयोग्य है। संसारे दश कर्मे जाति कुले अधिपत्य कृष्ण भजन जाति कुले नाथ महात्मा, संसार में जो दस कर्म है क्या दस कर्म, जन्म होना, इसके बाद में खोर कार्य मुंडन, इसके बाद में उपनयन, इसके बाद में नामकरण, चूड़ाकरण चोटी रखना, इसके बाद में उनका दीक्षा, दीक्षा के बाद में विवाह, विवाह के बाद में फिर उनके संन्यास या मृत्यु, तक तो दस कर्म है। उन दस कर्मों में ब्राह्मणों के क्या होता है, जाति कुल के अभिमान होता है, बढ़ता जाता है, किंतु कृष्ण भजन में इस जाति कुल वर्ण का दस संस्कार का कोई महत्व नहीं है। जाति कुले अभिमाने अहंकारी जन भक्ति के विद्वेष कर जाए नरक भवन, जाति कुल के अभिमान से अहंकारी व्यक्ति भक्ति के प्रति विद्वेष करके नरक के रास्ते साफ करते हैं, भक्त को देख करके, जैसे उस दिन एक नंदगांव पांडा का लड़का है छोटा सा, बोलते हैं हम तो वैष्णव संप्रदाय के हैं, हम गोड़ियाओं को वैष्णव नहीं मानते हैं, ये को वैष्णव है दिग्मा हंसते खाते पेट पालते क्या वैष्णव हंसते, हम तो वैष्णव संप्रदाय के, तो ऐसे ब्राह्मणों के पांडवों के जो अभिमान होता है, उच्च जाति के अभिमान होता है, वो वैष्णव को निंदा करके अपना नरक का रास्ता साफ कर लेते हैं, और तो कोई झुके प्रणाम भी करेगा वो नहीं झुके प्रणाम कर सकता, क्यों, ये मैंने भी देखा अपने जीवन में, हम लोग स्कूल में कॉलेज में जाकर भी कभी प्रोफेसर को गुरु को कभी हम लोगों ने पैर नहीं किया, हमारे जमाने में नियम था सब स्कूल जाके पहले अपने मास्टर का प्रोफेसर का पैर छीन लिया, क्योंकि हमारा समय स्कूल कॉलेज तो था नहीं, पेड़ के नीचे लगते थे, बरसात आगे आंधी आ गया एक कमरा था सब घुस जाते उसमें, छप्पड़ उसका पुश की उसमें घुस जाती, फिर क्लास वर्ग बाहर में तो जाके गुरु का पैर छीजे, हम नहीं छीजे थे, क्यों, हम ब्राह्मण हैं, तो मैंने सब लोग पैर छीजे तो मैं क्या करूँ, बोला हाथ जोड़ देना, माँ बाप ने सीखा है हम ऐसे हाथ जोड़ लेते खड़े हो गए, क्योंकि पैर कभी किसी का किया नहीं, ये जो अहंकार है जाति का रहता ही है, कभी जाता नहीं, किंतु ये अहंकार रहने से जाति कुल का अभिमान से अहंकारी जन भक्ति के प्रति विद्वेष करता है, किसी को वैष्णव या सम्मान देता नहीं, ये देश के कारण वो नरक के नरक में भवन बनाते हैं, नरक भवन, इसका भवन बनता है, घर बनता है नरक में, अर्थात दुख जातना सब समय, किसे जैसे सम्मान नहीं दिया उनका अवगुण सब आया, गुरु वैष्णव के निकट जा करके शीश नहीं झुकाया खड़े रहे तो ये क्या करते हैं, जितने लोग आते हैं गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं, और जो प्रणाम नहीं करते सर उठाकर खड़े रहते सीना तान के, तो उन लोग के जितने पाप है ना जाकर उसके सर में चढ़ता है, वो मंदिर आके बीमार पड़ जाता है, मंदिर आए घर के बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, और आने की मन नहीं करेगा, प्रणाम नहीं कहेगा, क्यों? तूने आके झुका करके तो सब दिया नहीं, छोड़ा नहीं, और ये सीनापन के ले भी गया। अब ले तो भोग, देख कैसा लगता है। इसलिए यदि वैष्णव के निकट अपने मुंड नहीं झुका तो बोलते वो मुंडो के वो जाएगा कहाँ? नरक के कुंड में। वैष्णव आगे नानो है मुंड, तो से मुंड जाए नरक के कुंड। इसे सन्यासी देखिए प्रणाम नहीं किया, सब संस्कार नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मचारी भी वो सन्यासी देखा दंडवत नहीं किया। यहाँ तक यदि पुत्र सन्यास ले माता पिता को उनको प्रणाम करना चाहिए। और करते हैं सची माता माँ को प्रणाम किया करती सन्यासी। इसे सन्यास चतुर्थाष्टमी बहुत जगह वर्णन है, चतुर्थाष्टमी है, इसके लिए साधन तो है नहीं, इसलिए बतलाया कि हम क्या सन्यासी बन गया तो इससे प्रणाम मांगेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो किरणार्थ पे सुनेंगे, वो तो दूसरे को देखते पहले ही प्रणाम करेगा। भक्त हैं वैष्णव है, संत है, क्यों? जो बड़े होते हैं उनका सदगुण सवैध गुण होता है, गुणी होकर के गुण का कार्य नहीं करेगा। इसलिए बतलाया नामाने वैष्णव भक्त नामाने धर्माधर्म अहंकार करे सदा अकर्म विकर्म। वैष्णव को भक्तों को नहीं मानते, धर्म अधर्म नहीं जानते हैं। वो क्या करेगा? अहंकार के द्वारा अकर्म विकर्म कुकर्म करेगा, और इसके द्वारा बहुत बड़ा बुरा होता है उनका। अभक्त जो ब्राह्मण है उनसे होते हैं, जो चामार है वो भी श्रेष्ठ है। यदि भक्त है, भक्त यदि चामार कुल में है ना तो श्रेष्ठ है। क्यों? अभक्त ब्राह्मण से कैसे? मुची भैया कृष्ण भजे कृष्ण कृपा पाए, सुची भैया भक्ति कृष्ण कृपा नहीं चाहे। দ্বাদশ গুণেতে বিপ্র অলঙ্কৃত হইয়া কৃষ্ণ ভক্তি বিনা যায় নরকে চলিয়া। মুচি হইয়া আমার চামার আছে, চামড়ে কা কাম করতা বাংলা মানুষকে মুচি বলতে বলে মুচি হইয়া কৃষ্ণ ভজে। যদি চামার হোক করি তো মেতন হোক করি কৃষ্ণ কা ভজন করতে তো কৃষ্ণ কে কিন্তু ব্যাপার তো বনতে। কেউ আপনার কর্মে তো উহা দুঃখময় জনি মে জন্ম হুয়া উহা সে হ্যাঁ ও भगवान के चरण में सुना, भगवान को पुकारते हैं तो क्या प्रभु उनके बात नहीं सुनेंगे, उनको कृपा नहीं करेंगे? कि सभी तो उनके संतान, कुकर्म से तो उस घर में जन्म हुआ। अब भजन करता है, सुधरने की कोशिश करता है तो उसका चांस नहीं देंगे भगवान? उनको भगवान सुधारेंगे, किसी कृपा करेंगे। और शुचि है, पवित्र है, किंतु भक्तिहीन है, अर्थात भगवान के भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता। वो ब्राह्मण होने से भी वो कृष्ण की कृपा नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे? द्वादश गुण क्या? जजन जजन अध्ययन अध्यपन और इधर उनके अंदर में समस्त गुणों से अलंकृत है वैष्णवों की, ब्राह्मणों की। किंतु गुण होने से भी वो यदि भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है तो क्या होगा? कृष्ण भक्ति बिना जाए नरक के चलिए, नरक क्लास तो सब करेंगे। क्यों? दिन रात 24 घंटा क्या करेगा? अपने शरीर पोषण के लिए और मन के पोषण के लिए कार्य करेगा, भक्ति तो करेगा नहीं भगवान के लिए, बोलेगा टाइम नष्ट हो रहा है। महापुरुष जब आए तब देखा ऐसे क्या ब्राह्मण लोग चंडी पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, जो गंगा जी में खड़े होकर जन्म में गायत्री जप करते हैं, चंडी के मंत्र करते हैं, तर्क करते हैं घंटों घंटों तक, तुम्हारा ठीक नहीं मेरा ठीक है। इसे महाप्रभु की गलती, महाप्रभु ने उनको जैसे जैसे करके अपने तरफ सुधारा। कृष्ण भक्ति तथा सर्वगुणगण अपन इच्छा दे वैसे अनुखन। यहाँ कृष्ण भक्ति वहाँ सब गुण अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। उनको भक्ति करने से अलग रूप से कुछ करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। भक्ति सुभगत संग न पड़ जाते, पूर्वजन्म सुकृति संचित है। भक्ति भक्तों के संग में जो कि आपके हृदय में आने लग गया तो भक्ति जब आई कुछ बाकी रह गया? कुछ बाकी नहीं रहेगा। राजा का लड़का होने से, पढ़ा लिखा नहीं होने से राज्य नहीं मिल सकता है, किंतु भक्ति आ गया हृदय में और कुछ बाकी रहेगा? इसके लिए बता रहे हैं जहां कृष्ण भक्ति तहां सब गुण ऑटोमेटिक आएगा ही उनके अंदर। भक्ति है यदि गुण की कमी है तो किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति की कृपा से समस्त आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। इसके लिए बताया है आप अनिच्छा देह वैसे अनुकरण, वो भक्ति देवी की इच्छा से उनके शरीर में जाकर के बैठ जाते हैं। उनका देह अलंकार है घृणास्पद अभक्ति जप्त शिवाज्य संपद, मुर्दा है मरा हुआ शरीर, उसको सोना चांदी अलंकार से सजा दो, कपड़े से पहना दो तो क्या है उसका शोभा मरे को सजाने से। ऐसे अभक्त जो है जब करता है तब करता है, नियम करता है, खूब नियम कर रहा है, माघ महीना एक महीना स्नान कर रहा है, ठंड में छुटू कर दी, किंतु भगवान से संबंध नहीं, भक्ति से भक्तों से संबंध नहीं, और एकादशी का व्रत भी करता है किंतु स्मार्ट क्रिया से, जिस दिन और रात एकादशी मिलेगा भले सुबह दसवीं मिल गया तो एकादशी करेगा दसवीं भेदी, और एकादशी को निर्जला भी करेगा रात्रि जागरण भी करेगा किंतु स्मार्टों की तरह एकादशी करेगा तो मोहिनी देवी सब ले जाएगी फल, बेचारा ठंड ठंड गोपाल कुछ भी नहीं मिलेगा उसे और दुख भोग मिलेगा, धर्म और तो कामों को मिल जाएगा किंतु शुद्ध कृपा तो मिलेगी नहीं। इसलिए बताना है भाई मृत देह अलंकार है घृणा स्पर्श, मुर्दे के ऊपर में अलंकार चलाने से घृणा की तरह होता है, ऐसे अभक्त की जब तक वो बड़ा भारी बाह्यिक चीज है। बता रहे हो भजवाई एक मणि सचिरनंदन जाति कुले अभिमान हवे विसर्जन, अभिमान छाड़िले भाई छाड़िले विषय, विषय छाड़िले हवे तुम्हार आशय। भज भाई एक मन सचिर नंदन, भाई मन की सारी बात को छोड़ करके एक मन से सचिनंदन गौरव की भजना करो, जाति कुल धर्म धर्म सब छोड़ो, अभिमान को छोड़ो, क्यों महाप्रभु है हरिदास ठाकुर के साथ भी रहते हैं और महाप्रभु सबके घर में माधुरी भिक्षा भी करते हैं, किंतु कैसे महाप्रभु आदेश कर दिया 1,00,000 नाम लक्षित सज्जु नहीं होगा उनकी भिक्षा मैं ग्रहण नहीं करूंगा, सब लोग मेरे 1,00,000 रुपया कहाँ से आएगा, लक्षित सज्जु कैसे बनेगा। फिर महाप्रभु ने आदेश दिया नहीं लक्षित सज्जु मतलब 1,00,000 भगवान के प्रति और 1,00,000 नाम जो करेगा उनका कच्चिया हुआ तो बनाए हुए प्रसाद ग्रहण करूंगा नहीं तो मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जब से सब भक्त अब इधर क्या आप अच्छा दिवस रजनी आ बोलता बोल पाचाल पाड़ी के पारो तार भीतर कखन कर गोविंद बोली चेनार सब भक्त चुप हुए अब बात नहीं करते हो एक दूसरे से इधर उधर की बात नहीं बैठ कर 1,00,000 नाम करते हैं, नाम पूरा करते हैं तब प्रसाद बनाते हैं महापुर भोग लगते हैं। मैं पूज्यपद माधव महाराज जी समय देखा उन्होंने पुजारी को आदेश दिया था वृंदावन में देख वृंदावन हमारा एक मिनट चलेगा सारा विश्व में हमारा प्रचार होगा और तुम एक एक अकेले हरिनाम करोगे महापुरुष की भोग लगाओगे तो ही हमारा सब काम होगा। पुजारी भी नियम पूर्वक जमुना स्नान करना आरती करना समस्त सेवा करना और 1,00,000 नाम करना बड़े ही निष्ठापूर्वक सेवा करते पहाड़ी देहरादून के ब्राह्मण थे भक्त तो मैंने बहुत जगह को देखा नवद्वीप में भी देखा बहुत भक्त लोग हैं हमारे नीचे प्रभु थे 1,00,000 नाम से कम कभी नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए विश्व प्रलय हो जाए कितना काम नाम उनका पूरा और भगवान शक्ति देते टाइम भी देते निष्ठा होने से तो बोलते हैं भाई जाति बोल के अभिमान छोड़ करके जब सचिनंदन की भजन करोगे तभी तुम्हारा क्या होगा अभिमान छाड़ी ले भाई छाड़ी के विषय विषय छाड़ी ले शुद्ध हो तुम्हारा असर अभिमान छोड़ने से विषय छूट जाएगा जितना अभिमान छोड़ देंगे सोचेंगे इस अभी मंदिर की मैं काम करने वाला मैं देखने वाला मेरे बिना होगा नहीं मैं ये करने वाला छोड़ अभिमान छोड़ दो देखो विषय तुम्हारे पास अब नहीं है अब तक नहीं करेगा जब तक अभिमान है मैं करने वाला मेरे बिना होगा नहीं मेरे पास जिम्मेदारी है तब तक विषय छूटेगा नहीं। ये तो क्या भगवान की संपत्ति है भगवान की सेवा है दुनियादारी की बात विषय छाड़ी से शुद्ध हमें तुम्हारा रास्ता विषय छोड़ने से अपने आप ही चित्त निर्मल हो जाएगा आपसे मतलब चित्त आश्रय भगवान विराजमान हो जाएंगे विषय छोड़ दिया बीच नहीं है अब विषय के अनुराग लो उठाइया कृष्ण पदाम्बुज रागे देह लगाइया निश्चय से अनुराग को उठा लो और क्या करो कृष्ण चरण में अनुराग को लगा दो। और क्या तुम सत्कुलीन ताहे की बात होती कुले रविमान चाड़ी हो दीन मोती। तुम भी सत्कुलीन है, ब्राह्मण है, उच्च कुल के हैं, कोई बात नहीं है, उसे कहानी क्या है, उस अभिमान को छोड़ करके अपना दीन हीन मोती बनाओ। जब तक वैष्णव चरण में अपने को नौचार नहीं कर सकते तब तक नहीं होगा। दिने अधिक दया करे भगवान अभिमानी दैन्य नाई रहे एक स्थान। जो दीन है भगवान उनको बहुत कृपा करते हैं, वो चारों तरफ में झुक रहा है, सबको प्रणाम करता है, आशीर्वाद चाहता है, सबको इनका कृपा मांगता है, भगवान उनको कृपा करते हैं। और अभिमान दैन्य नाई रहे एक स्थान, एक जगह में अभिमान और दीनता दोनों एक साथ रहेगा नहीं रह सकता, हंसेंगे भी गाली फुलाएंगे छटा करके, दोनों एक साथ नहीं होगा। और क्या करेंगे, हम क्रोध भी करेंगे, इधर इतना भी शांत रहेगा कैसे होगा, एक साथ दो हो सकता है, साधु एक मिनट में क्रोध किया एक सब सब शांत है, कैसे क्रोध नहीं, उसने क्या किया देखा कि बच्चा मिट्टी खा रहा है, एक थप्पड़ मार दिया मिट्टी को निकाल के फेंक दिया, फिर माँ गोदी में बच्चा को लिया, मिट्टी थप्पड़ क्यों दिया, हाँ करेगा हाँ करेगा रोएगा मुंह से मिट्टी निकाल लेगा, नहीं तो मिट्टी निकालने के लिए जाएगा हाथ काट देगा, देखा नहीं ऐसे संत का क्रोध है माँ की तरफ, देगा अच्छा करके धमाका लगा के कितनी देर के लिए, दो एक सेकंड के लिए, फिर प्यार करेगा फिर बोलेगा आप क्रोधी लो महाभगवान उसके जितने दुरास्त है बड़ा अशांत है, खुद दुखी है, खुद को शांति नहीं। अब कोई उसमें क्रोध ज्यादा होता है ना गर्मी, ऐसे गर्मी जहाँ होता है ना डर के मारे कीड़े मकोड़े भी नहीं जाते, तो उनके पास कोई जाता नहीं, वो खुद अशांत रहते हैं। इसलिए वाले अभिमान नरकेर पद ताहे जत्ने तेज धन्य राधा गोविंदी पाद पद्म अभज। अभिमान नरक का रास्ता है, नरक का पथ है, इसलिए अभिमान त्याग करके बड़े जत्न के साथ में गोविंद की पद्म का भजन करो, दैन्य के साथ में राधा गोविंद की सेवा करो, पद्म भजन करो, ये सोचना है।